घर परिवार।
प्रिय श्रोताओं, घर परिवार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं ज़हरा ज़ैदी और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार करें।
हज़रत अली सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा किसी से खुले दिल से मिलना तुम्हारी पहली नेकी है और वो तुम्हारे बड़प्पन को दर्शाता है। कितना अच्छा हो कि इंसान सूर्योदय के बाद अपने परिवार के सदस्यों से दिल खोलकर मिले और उन्हें खुशी और प्रफुल्लता का आभास कराए। अगर आपके परिवार के समस्त सदस्य टीवी देखते हैं या किताब पढ़ते हैं तो वास्तव में इससे दिनचर्या के कामों के साथ उनका पूरा समय गुजर जाता है। आज हम आपसे कुछ अनुशंसा करना चाहेंगे जिन्हें दृष्टि में रखकर शरीर के वजन में वृद्धि जैसी बहुत सी बीमारियों से अपने परिवार को न केवल बचा सकते हैं बल्कि परिवार में खुशी और प्रफुल्लता का माहौल भी पैदा कर सकते हैं।
पहला ये कि प्रतियोगिता कराएं और परिवार के समस्त सदस्यों का आह्वान करें कि वे उसमें भाग लें। दूसरा ये कि प्रतिदिन 10 मिनट तक व्यायाम करें। तीसरे ये कि जो शेर आपको पसंद है उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पढ़ें, परिवार के सदस्यों को चुटकुले सुनाएं और पहेली बुझाएं और प्रतियोगिता जीतने वाले को पुरस्कार से सम्मानित करें।
अगर मौका है और उचित अवसर है तो परिवार के सदस्यों के साथ पार्क जाइए या पर्वतारोहण कीजिए। वर्षा के समय पैदल चलिए और अगर बर्फ पड़ी हो तो उससे खेलिए। सादा व्यंजन तैयार कीजिए और प्राकृतिक स्थल पर जाकर उसे सबके साथ मिलकर खाइए। सब मिलकर घर की सफाई करें, सबको एक एक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता कराइए और परिवार के समस्त सदस्यों विशेषकर बच्चों को व्यंजन बनाने का अवसर दीजिए। अलबत्ता ये सब बड़ों की निगरानी में होना चाहिए।
श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको उस परिवार से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे पवित्र कुरान में सर्वोत्तम परिवार के रूप में याद किया गया है। जिन परिवारों की पवित्र कुरान ने प्रशंसा की है उनमें से एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का परिवार है और ये दोनों हस्तियां पति पत्नी अच्छाइयों, समरसता और सद्गुणों के प्रतीक हैं। इस परिवार में पैगंबर इस्लाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना थे और हज़रत अली और जनाब फातिमा ज़हरा उनके माता पिता थे। इस परिवार में हज़रत फातिमा ज़हरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घर का सारा काम करने के अतिरिक्त हज़रत फातिमा ज़हरा राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेती थीं, जबकि घर में उनकी केंद्रीय भूमिका थी। इस परिवार में हर सदस्य दूसरे सदस्य के लिए किसी प्रकार की समस्या व विघ्न उत्पन्न किए बिना सामूहिक कार्यों में भाग लेता था।
इस परिवार में पत्नी का अपने बाप और बच्चों की सेवा किसी प्रकार अपने जीवन साथी के अधिकारों पर ध्यान देने से विरोधाभास नहीं रखती। इस परिवार में धर्मपरायणता और दिनचर्या के कार्यों पर ध्यान देने में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं था। इसी प्रकार बच्चे को जन्म देने और प्रेम के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा ने बहुत ही सादा जीवन आरंभ किया। ये सादा जीवन इतना प्रभावी है कि उसकी याद सदा के लिए इतिहास में अमर हो गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने प्रेम से छोटे से मिट्टी के घर को निष्ठा, प्रेम और सच्चाई का सर्वोत्तम आदर्श बना दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के परिवार के समस्त सदस्य महान ईश्वर के प्रेमी थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी ईश्वर अपने बंदे को इज्जत देना चाहता है तो उसे अपना प्रेमी बना देता है।
महान ईश्वर से प्रेम की ज्वाला ने उस घर को प्रकाशित कर रखा था और उसके सदस्य महान ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए थे। अतः हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा भी ईश्वरीय प्रेम में डूबे हुए थे। हज़रत फातिमा ज़हरा अपने जीवन के यादगार क्षण में भी महान ईश्वर की याद को सर्वोपरि रखती थीं।
एक बार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अपनी पत्नी को कैसा पाया, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तुरंत जवाब में फरमाया, ईश्वर की उपासना और बंदगी में बेहतरीन सहायक। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने छोटे से घर को इस्लामी शिक्षाओं के केंद्र में परिवर्तित कर दिया था। इस घर से बच्चों और लोगों का धार्मिक प्रशिक्षण करती थीं। उन्होंने अपने धार्मिक प्रशिक्षण से स्वस्थ, अच्छे, सफल और प्रभावी जीवन की शैली को दर्शा दिया।
श्रोताओं, पवित्र कुरान के सूरह दहर के नाजिल होने पर एक दृष्टि डालते हैं। इस सूरह को सूरह इंसान भी कहा जाता है। परित्याग और महान ईश्वर की प्रसन्नता के मार्ग में खर्च हजरत अली और हजरत फातिमा जहरा के घर की महत्वपूर्ण विशेषता है। पवित्र कुरान के बहुत से शिया और सुन्नी व्याख्याकारों का मानना है कि सूरह दहर या इंसान पैगम्बर इस्लाम के पवित्र परिजनों के बारे में नाजिल हुआ है। इस्लामी रवायतों में आया है कि एक बार इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। पैगंबर इस्लाम अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें देखने के लिए आए तो उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने बच्चों के ठीक होने के लिए मन्नत मानो। इसके बाद हज़रत अली और जनाब फातिमा ने मन्नत मानी कि अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन ठीक हो गए तो वे 3 दिन तक रोज़ा रखेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमारी से ठीक हो गए तो परिवार के समस्त सदस्यों ने रोज़ा रखा। हज़रत फातिमा जहरा ने थोड़ा गेहूँ पीसा और उसकी रोटी पकाई। जब इफ्तार यानी रोज़ा खोलने का समय आया तो एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया। उसने कहा, हे पैगंबर इस्लाम के परिजन, आप पर सलाम हो, मैं एक असहाय मुसलमान हूँ, मुझे खाना दीजिए, ईश्वर आपको स्वर्ग का खाना खिलाए। सब ने भिखारी को स्वयं पर प्राथमिकता दी और सबने अपनी अपनी रोटी भिखारी को दे दी और स्वयं केवल पानी से इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन सबने रोज़ा रखा और जब रोज़ा इफ्तार का समय आया तो मांगने वाला उनके दरवाजे पर आया और कहा कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दीजिए। तो सबने अपनी अपनी रोटी उसे दे दी और पानी पीकर रात गुजार दी और तीसरे दिन भी कुछ खाए बिना रोज़ा रख लिया। तीसरे दिन शाम को जब रोज़ा खोलने का समय आया तो हज़रत अली और जनाब फातिमा जहरा के दरवाजे पर एक बंदी आया और उसने खाना मांगा तो सब ने अपने अपने हिस्से की रोटी मांगने वाले को दे दी। जब पैगंबर इस्लाम अपने पवित्र परिजनों के पास आए और उन्होंने अपने परिजनों को भूख की हालत में देखा तो रुहांसे हो गए। इस दौरान पवित्र कुरान के सूरह इंसान की 5 से लेकर 9 तक की आयतें उनके बारे में उतरी।
सूरह इंसान की 5 से लेकर 9 तक की आयतों का अनुवाद है, निश्चित रूप से वफादार व भले लोग ऐसे जाम पियेंगे जिसमें काफूर का मिश्रण होगा। उस सोते व चश्मे का क्या कहना जिस पर बैठकर अल्लाह के बंदे पियेंगे, इस तरह के उसे जहां चाहेंगे बहा ले जाएंगे। वे मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसका प्रकोप बहुत भयानक व प्रलयकारी होगा और वे मोहताज, अनाथ और बंदी को खाना खिलाते हैं जबकि उन्हें उस खाने की ज़रूरत होती है। वे कहते हैं कि हम तो केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए तुम्हें खाना खिलाते हैं, हमें न तो तुमसे इसका बदला चाहिए और न ही तुम्हारा शुक्रिया चाहिए।
पवित्र कुरान के अनुसार महान ईश्वर की राह में खर्च करना मूल्यवान और अच्छी चीज़ है और महान ईश्वर इस बात की गणना सदाचारी लोगों की विशेषताओं में करता है और उसे मुक्ति व कल्याण का कारण समझता है। इस संबंध में हज़रत अली और हज़रत फातिमा जहरा का परिवार सबसे आगे था। अगर किसी परिवार की ओर से महान ईश्वर की राह में खर्च करने की उपेक्षा कर दी जाए तो कभी ये कार्य परिवार से ईश्वरीय अनुकंपाओं के समाप्त होने का कारण बनता है।
जब बाग़ फिदक हज़रत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के पास था तो कुछ रवायतों के अनुसार उसकी वार्षिक आमदनी 70,000 से लेकर 1,20,000 सोने के सिक्के तक थी। बाग़ फिदक से होने वाली सारी आमदनी हज़रत फातिमा जहरा की सेवा में पेश की जाती थी। हज़रत फातिमा जहरा उसमें से अपनी ज़रूरत भर का ले लेती थीं और बाकी सारी आमदनी गरीबों, निर्धनों और मदीना के दरिद्रों में बांट देती थीं। इस तरह जिस दिन बाग़ फिदक की मासिक आमदनी हज़रत फातिमा जहरा की सेवा में पेश की जाती थी तो मदीना के गरीबों, निर्धनों और भिखारियों की ईद हो जाती थी।
मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन फरजाद परिवार के संबंधों को 4 भागों में बांटते हैं, प्रेमपूर्ण संबंध, संतुलित संबंध, सामान्य संबंध और निरर्थक संबंध। वो कहते हैं, आरंभिक दो प्रकार के परिवारों के सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं, परंतु अध्ययनों ने दर्शा दिया है कि भागे हुए बच्चे विशेषकर लड़कियों का संबंध अंतिम दो प्रकार के परिवारों से होता है। इस प्रकार के परिवारों के सदस्यों को दूसरों के छलावे और बहकावे में आने का खतरा अधिक रहता है। प्रोफेसर फरजाद लड़कियों की संवेदनशील भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए कहते हैं, आमतौर पर बाप अपनी बेटियों की सहायता करते हैं ताकि उनकी बेटियां समस्याओं का सामना कर सकें, दुनिया का भ्रमण करें। जिस बाप के पास समय हो उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ रास्ता चले, वो अपनी बेटी का पथ प्रदर्शन करे, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरे, उसकी बातों को सुने और उसे आराम व सुकून का आभास कराए। अगर ऐसा करता है तो उसे अपने जीवन का मूल्यवान उपहार देता है।
अध्ययन इस बात के सूचक हैं कि वे लड़कियां बेहतर ढंग से काम करती हैं और उनका आत्मविश्वास अधिक होता है जिनके बाप उनकी सहायता इसलिए करते हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और स्वतंत्र ढंग से काम कर सकें। इस प्रकार की लड़कियों का आत्मविश्वास अधिक होने के अलावा वे अपने बच्चों के लिए अधिक अच्छे ढंग से माँ की भूमिका निभा सकती हैं। जो इंसान अपनी लड़की की ज़िंदगी में अच्छे बाप की भूमिका निभाना चाहता है उसे कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। जिन बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है उनमें से एक यह है कि जहाँ तक संभव हो सके इंसान को चाहिए कि अपनी लड़की के स्कूल के कामों की निगरानी करे, और अगर ये कार्य उसके लिए संभव नहीं है तो उसे इस बात का विश्वास नहीं रखना चाहिए कि इस संबंध में उसकी पत्नी समस्त आवश्यक कार्यों को अंजाम देगी।
इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाप के अच्छे होने के कारण संतान गुमराही से बची रहती है। बेहतर है कि इंसान एक समय निर्धारित करे और हर हफ्ते अपनी बेटी की सहेली से मुलाकात करे। जब इंसान अपनी बेटी की सहेली से मुलाकात करेगा और उसे पहचानेगा तो उसके लिए इस बात की संभावना उत्पन्न हो जाएगी कि वो अपनी बेटी से उन मामलों के बारे में बात कर सकता है जिनके बारे में उसकी बेटी को अपनी सहेलियों से समस्या व मतभेद होता है। जो मनुष्य अपनी बेटी की ज़िंदगी में अच्छी भूमिका निभाना चाहता है उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी का प्रोत्साहन आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी करे। बहुत से आध्यात्मिक सभाओं में भाग लेने से आपकी बेटी अपने लिए अच्छी सहेलियों का चयन कर सकती है।
इसी तरह हर इंसान की बेटी बेहतरीन माँ की भूमिका निभा सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर इंसान अपनी बेटी को अच्छी माता की भूमिका नहीं सिखा सकता तो आध्यात्मिक विकास में उसने उसकी कोई विशेष सहायता नहीं की। इंसान की बेटी के लिए ज़रूरी है कि वे प्रेम और सुरक्षा की छत्रछाया में पले बढ़े और परिपूर्ण महिला बने। ये व्यक्ति की बेटी के अधिकार हैं और वे इस अधिकार को प्राप्त करने की पात्र हैं।